शान भी सारा दिन काम करने के बाद घर आया। आरवी किचन में काम कर रही थी। शान अंशु को लेकर कमरे में चला गया, कपड़े बदले और फ्रेश होने के बाद अंशु के साथ खेलने लगा। सारा दिन में अभी ही उसे उससे बात करने और खेलने का वक्त मिलता था। अंशु भी उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी। रात के 8 बज गए। आरवी ने अपना काम खत्म किया। छाया, श्याम बाकी सबको बुलाने चले गए और आरवी को ना चाहते हुए भी शान को बुलाने जाना पड़ा। वो कमरे में आई तब अंशु शान की पीठ पर बैठी हुई थी और शान पुशअप्स कर रहा था। अंशु लबों पर मुस्कान सजाए काउंटिंग कर रही थी। जहां वो अटकती, शान उसको बता देता। आरवी कुछ पल गेट पर खड़ी होकर दोनों को देखती रही। यही तो वो पल होता था जब आरवी को शान का सॉफ्ट नेचर देखने को मिलता था। अंशु के साथ वो एकदम नॉर्मल रहता था, लबों पर हल्की मुस्कान रहती थी, गुस्से का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता था। यही वो पल होता था जब आरवी को बाकी सबकी कही बातें सच्ची लगती थीं, कि शान वो नहीं जो वो दिखाता है, शायद वक्त ने उसे इतना सख्त बनने पर मजबूर कर दिया है। आरवी एकटक शान को देख रही थी। अंशु ने 100 तक काउंटिंग पूरी की, फिर खिलखिलाते हुए क्लैपिंग करने लगी। शान ने अपनी बाह उस पर लपेटते हुए उसको आगे कर लिया और पीठ के बल जमीन पर ही लेट गया। अब अंशु उसके पेट पर बैठ गई। शान ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, दैट्स माई गर्ल, आपको 100 तक काउंटिंग याद है। मम्मा अंशु को रोज स्टडी करवाती है, पता है, अंशु ने ABCD भी सीख ली, अ से अनार भी सीख लिया। अब मम्मा अंशु को पढ़ना सिखाएंगी। मम्मा ने कहा अंशु बहुत इंटेलिजेंट है, वो जल्दी से सब सीख जाती है। अंशु बड़े शौक से उसे सब बता रही थी और उसकी बात सुनकर शान सोच में पड़ गया। आरवी ने अब अंदर आते हुए कहा, अंशु बेटा आप नीचे जाइए, बड़ी दादी आपको बुला रही हैं, मम्मा को आपके डैडी से कुछ बात करनी है। अंशु ने मुस्कुराकर ओके मम्मा कहा और शान के गाल पर किस करने के बाद उसके पेट पर से उतरकर कमरे से बाहर चली गई। शान भी उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। आरवी ने अब उसको देखकर गंभीरता से कहा, क्या आप बिना मुझसे झगड़े मेरे लिए अपनी नफरत को साइड रखकर 2 मिनट शांति से मेरी बात सुन सकते हैं? मेरे लिए नहीं, अंशु के लिए। अंशु का नाम सुनते ही शान के भाव, जो आरवी की बात सुनकर सख्त हो गए थे, वो कोमल हो गए। बोलो, उसकी आवाज में अब भी सख्ती थी। आरवी ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसे देखकर कहना शुरू किया, मैंने आज बड़ी माँ से पूछा कि अंशु की उम्र के बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो सिर्फ घर में ही क्यों रहती है, स्कूल क्यों नहीं जाती? तो उन्होंने कहा कि आपने ही उसे स्कूल भेजने से मना किया है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद आपकी कोई मजबूरी होगी, वरना जितना आप अंशु से प्यार करते हैं उसके भविष्य को लेकर आप इतने केयरलेस हो ही नहीं सकते। आपकी जो भी वजह है, क्या वो अंशु की खुशी, उसकी जिंदगी, उसके भविष्य से बढ़कर है? आप तो इतने अमीर हैं, अगर आप नहीं चाहते कि बाहर किसी को पता चले कि अंशु आपकी बेटी है, तो ये बात छुपाना आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं? इसके लिए आप उसे स्कूल ही नहीं जाने दे रहे, ये कहाँ तक ठीक है? मानती हूँ पढ़ाई घर पर भी हो सकती है, पर लोगों से बात करना, उनके साथ खुलना मिलना, उठने बैठने का तरीका वो हमारे बीच रहकर नहीं सीख सकती, ये सब बच्चे स्कूल जाकर सीखते हैं। उनका पूरी तरह से विकास हो, इसके लिए उनका लोगों से मिलना जुलना भी जरूरी है, वरना वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि कैसे लोगों को फेस करते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आप अंशु को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ी कमी रह जाएगी, उसे लोगों से डील करना आएगा ही नहीं। अगर बड़ी होकर बाहर गई तो घबरा जाएगी और ये कमी आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। उसकी उम्र के बच्चे क्या कुछ नहीं करते और वो बस इस घर की चार दीवारी में कैद है। आप उसके डैड हैं, उसकी जिंदगी का फैसला लेने का हक है आपको, पर उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का हक नहीं है आपको। आप अपनी वजह से उसे दुनिया से काटकर अकेले नहीं रख सकते। मैं बस इतना कहूंगी कि हर प्रॉब्लम के बहुत से सोल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान हैं तो मैं वादा करती हूँ उसे स्कूल छोड़ने भी मैं खुद जाऊंगी और लेने भी मैं जाऊंगी। उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप बस एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दीजिए, ताकि वो भी आम बच्चों की तरह जिंदगी के हर रंग को देख सके, अपने जैसे और बच्चों से मिले और खुले। ये तो मैं 2-3 दिन में समझ गई कि अंशु बहुत ही नाजुक दिल की बच्ची है, बहुत जल्दी डर जाती है, किसी से जल्दी से खुलती मिलती नहीं है, और ये सब उसके इस घर में बंद रहने की वजह से है। एक बार में इस बारे में सोचकर देखिएगा, आपका फैसला अंशु की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। माँ बाप को बच्चों से प्यार करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, पर सब एक सीमा के अंदर। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है, जरूरत से ज्यादा प्यार पैरों की बेड़ियां बन जाती है और केयर दम घोटने लगता है। अंशु को आजादी से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, वो इस सोने के पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं बनी है। उस नन्ही चिड़िया को आसमान में उड़ने दीजिए, ऐसे कैद रखेंगे तो उसके पंख बेजान हो जाएंगे और फिर वो बाद में कभी चाहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगी। मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने किया। उसके डैड आप हैं,
आखिरी फैसला आपका ही होगा। नीचे आ जाइए, सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर आरवी कमरे से बाहर चली गई। शान बहुत सीरियस होकर उसकी हर बात सुन रहा था, वो भी नीचे चला आया। आज उसने कोई फरमाइश नहीं की, सब जानते थे कि वो आरवी को परेशान करता है, पर आज उसको शांत देखकर सब हैरान थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। सबने शांति से खाना खाया। इस बीच शान के दिमाग में आरवी की कही बातें और अंशु का चेहरा घूम रहा था। खाने के बाद वो सुभाष जी को लेकर बाहर गार्डन में चला आया, तो आरवी अंशु के साथ उसके कमरे में चली गई। शान उन्हें गार्डन में घुमाने लगा। कुछ देर वहां खामोशी फैली रही। उसके बाद सुभाष जी ने व्हीलचेयर रोक दी तो शान ने तुरंत सवाल किया, क्या हुआ डैड? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आपको क्या हुआ है? आज डिनर के वक्त भी आप कहीं और ही खोए हुए थे और आप हमारे साथ आए हैं, मतलब कोई बात आपको परेशान कर रही है। जब से आपकी माँ गई हैं, जब जब आप बहुत उदास या परेशान होते हैं तो ऐसे ही हमारे पास आ जाते हो, पर बोलते कुछ नहीं, पर हम आपकी खामोशियों को पढ़ना जानते हैं। अभी आप परेशान हैं तो बताइए, हमारे बेटे को किस बात ने परेशान किया हुआ है? शान अब उनके सामने आकर उनके पास नीचे बैठ गया और उनके हाथ को थामते हुए बोला, आप जानते हैं डैड, अंशु में मेरी जान बसती है, मैं उसे लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ हम जानते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? डैड मैं नहीं चाहता कि अभी ये बात बाहर आए कि मेरी कोई बेटी भी है, इसलिए मैं अंशु को स्कूल भेजने के बारे में नहीं सोच रहा, जबकि उसकी उम्र के बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? देखिए बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, उनके सुरक्षा के लिए चिंतित भी होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने बच्चे को कहीं जाने ही ना दे, दुनिया देखने ही ना दे, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखे। आप क्यों सबको अभी अंशिका के बारे में नहीं बताना चाहते? हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये आपका अपना फैसला है, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि अपने बारे में सोचकर खुद कर्ज मत बनिए।
अंशु के साथ गलत मत करिए, उन्हें भी हक है आम बच्चों की तरह स्कूल जाने का, दोस्त बनाने का, पढ़ने का। आप जानते हैं अंशु और बच्चों की तरह नहीं है, उन्हें बाहर निकलने की और खुलने की जरूरत है, वरना वो कभी बाहर निकलकर दुनिया की कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगी। आज आरवी ने स्कूल का नाम लिया तो अंशु कितनी एक्साइटेड हो गई थी। अगर आप अपनी बेटी को दुनिया की नज़र में नहीं लाना चाहते तो किसी नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन करवा दीजिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो इतने अमीर बाप की बेटी हैं और वो स्कूल भी जा पाएंगी। बहुत से अच्छे स्कूल हैं यहाँ, पढ़ाई भी अच्छी होती है और आम लोगों के बच्चे ही वहाँ जाते हैं, अंशु भी उन्हीं के बीच पढ़ लेगी। खुद आपने भी एक आम स्कूल से पढ़ाई की है और देखिए आज आप कहाँ हैं। वैसे भी जब आप सबके सामने उनकी पहचान ले आएंगे तो किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन करवा दीजिएगा। आप कहें तो हम अंशु के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढ देते हैं। आप वहां जाकर बात कर लीजिएगा कि किसी को ना बताए कि अंशु के डैड कौन हैं। हम तो यही कहेंगे कि अंशु अब बड़ी हो गई है, उन्हें इस घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलने की जरूरत है, और स्कूल वो जगह है जहां बच्चों का मानसिक शारीरिक साथ में होता है। बच्चे बहुत सी चीजें सीखते हैं वहां, उनकी पर्सनैलिटी वहीं से बननी शुरू होती है। सुभाष जी ने उसको सब पहलू समझाने की कोशिश की। वो चुप हुए तो शान ने कुछ परेशान होकर कहा, पर वो मेरी बेटी है, किसी लोकल स्कूल में कैसे जा सकती है? जब बाप लोकल स्कूल से पढ़कर इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती? हम एक अच्छा सा स्कूल ढूंढ देते हैं, आप और आरवी जाकर एडमिशन करवा दीजिएगा। चिंता मत कीजिए, दादू हैं उनके, उनके लिए बेस्ट ही ढूंढेंगे। उनकी बात सुनकर शान ने हामी भर दी। कुछ देर बाद वो उन्हें उनके रूम में ले गया, फिर अपने रूम में आकर बेड पर बैठकर सब बातों के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ आरवी ने अंशु के कपड़े बदले, फिर उसको कहानियां सुनाते उसको सुलाने लगी। छाया भी वहीं बैठी कहानी सुन रही थी। कुछ देर बाद अर्पिता जी आज फिर अंशु के कमरे में आ गई। उसे यहाँ देखकर उन्होंने सवाल किया, आप अभी तक यहीं हैं? आवाज़ सुनकर आरवी ने नजरें घुमाकर उन्हें देखा, फिर बैठते हुए बोली, मैं यहीं सो जाऊंगी बड़ी माँ, कल अंशु को छोड़कर चली गई थी तो आज सुबह वो शिकायत कर रही थी कि मैं उन्हें छोड़कर चली गई, तो एक काम कीजिए उन्हें भी अपने साथ लेकर जाइए, पर आप सोएंगी तो वहीं। उन्होंने उसे अपना फैसला सुना दिया। आरवी को मजबूरी में उनकी बात माननी ही पड़ी। उसने जैसे ही अंशु को उठाया उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो अभी अभी सोई थी और उसकी नींद अभी कच्ची थी। अंशु ने अपनी नींद से बोझिल छोटी छोटी आंखों को खोलते हुए उसे देखकर सवाल किया, मम्मा आप अंशु को फिर से छोड़कर जा रहे हो? उसके सवाल को सुनकर अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, आपकी मम्मा आपको आपके डैडी के पास लेकर जा रही हैं, अब से आप उन्हीं के साथ सोएंगी। अंशु की आंखें चमक उठी, नींद एकदम से गायब हो गई और उसने एक्साइटेड होकर आरवी से सवाल किया, मम्मा हम डैडी के पास जा रहे हैं, अब अंशु डैडी और मम्मा साथ में रहेंगे। वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों को टिमटिमाकर उसे देखने लगी। आरवी ने हामी भरी तो अंशिका का चेहरा खिल उठा, वो उसकी गर्दन से लिपट गई। आरवी उसे अपनी गोद में उठाए शान के कमरे की तरफ बढ़ गई। शान बेड पर बैठा सोच में गुम था, तभी आरवी ने वहां कदम रखा तो आहट पाकर शान ने भी दरवाजे की तरफ नजरें घुमाई। आरवी के साथ अंशु को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। आरवी ने अंशु को बेड पर उतारा तो वो झट से शान के पास आ गई।
आप अभी तक सोई नहीं? शान के सवाल पर अंशु उसकी गोद में बैठ गई और मुस्कुराकर बोली। मम्मा ने कहा अब अंशु मम्मा और डैडी के साथ सोएगी। उसकी बात सुनकर शान ने तिरछी नजरों से आरवी को देखा। आरवी उसे ही देख रही थी। शान से नजरें मिलते ही उसने उस पर से नजरें हटा ली और अंशु को देखकर बोली, अंशु बेटा चलिए आकर लेटिए, रात हो गई है, अभी सोएंगी नहीं तो सुबह उठने में नखरे करेंगी। अंशु एकदम अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मान गई। आरवी ने उसको लिटाया और उसके पास खुद आधी लेटकर उसके सर पर थपकी देते हुए उसको स्टोरी सुनाने लगी। अंशु स्टोरी सुनते सुनते ही सो गई, साथ में आरवी की भी आंख लग गई। उसने चेंज भी नहीं किया था, ऐसे ही सो गई। शान खामोश सा दोनों को देख रहा था। जहां अंशु को देखकर उसके लबों पर मुस्कान थी तो आरवी को देखकर उसे चिढ़ हो रही थी। वो वहां रुक नहीं सका और पिलो लेकर उठकर सोफे की तरफ पड़ गया।